मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आज आपको अकबर महान की धार्मिक नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा के किताब से ली गई है। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति में अकबर की धार्मिक नीति को श्रेष्ठतम माना गया है। अकबर की नीति पूर्णतया धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक नीति सुलह कुल सभी के साथ शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों में इस नीति को आरंभ करने वाला अकबर था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा है, सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति उदारता और सक्रिय सहानुभूति एवं सहायता का प्रयत्न प्रांतीय राज्यों के द्वारा तो कभी कभी किया ही भी गया था, परंतु दिल्ली और आगरा के बादशाहों ने यह प्रयत्न कभी नहीं किया था। अकबर प्रथम शासक था जिसने शासन के आरंभ से ही धीरे धीरे सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति प्रगतिशील उदारता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को अपनाया। अकबर के उदार धार्मिक विचारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के निर्माण में परिस्थितियों ने सहायता दी। अकबर का पिता हुमायूं उदार सुन्नी था। अकबर की माता सिया थी और अकबर का संरक्षक बैरम खां भी सिया था। आरंभ में अकबर उदार सूफी संतों के संपर्क में आया था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ धार्मिक विचारों में इतना उदार था कि फारस में उसे सुन्नी समझा जाता था और भारत में उसे सिया समझा जाता था। अकबर का भारतीय जीवन से संपर्क पंजाब से आरंभ हुआ, जहां गुरु नानक जैसे धर्म प्रचारक हिंदू और इस्लाम धर्म की एकता में विश्वास करना सिखा रहे थे। भक्ति आंदोलन के अन्य विभिन्न धर्म प्रचारकों भी सभी जातियों और धर्मों की समानता, धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर प्रेम का प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार अकबर का लालन पालन और शिक्षा उदार वातावरण में हुई, और जो व्यक्ति आरंभ में उसके संपर्क में आए वह उसके विचारों को उदार बनाने वाले थे। अकबर पर अपने युग का भी प्रभाव पड़ा। 16वीं सदी में संपूर्ण संसार में धार्मिक पुनरुत्थान की सदी स्वीकार की गई है। भारत में भी हमें यह विशेषता प्राप्त होती है। प्रोफेसर एच एन सिन्हा ने लिखा है, संसार के इतिहास में 16वीं सदी धार्मिक पुनरुत्थान की सदी है। धर्म प्रचार सुधार की लहर की समता भारत में उत्पन्न हुए जीवन के नवीन उद्वेग से समुचित प्रकार से की जा सकती है। भारत ने ऐसे जागृति का अनुभव किया जिसने उसकी प्रगति को तीव्र किया और राष्ट्रीय जीवन को शक्तिशाली बनाया। इस नव जागृति की मूल भावनाएं थी प्रेम और उदारता। प्रेम जिसने ईश्वर को मनुष्य से मिलाया और इस कारण मनुष्य को मनुष्य से मिलाया, तथा उदारता जिसने इस प्रेम से जन्म लेकर जाति संप्रदाय और व्यवसायों को अंतर को समाप्त कर दिया, जिसने मानव अस्तित्व और सभी धर्मों के तत्वों को अपना आधार बनाया, और वह आधार था मानव भातृभाव। इसने अपने महान आदर्शों से हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से प्रेरणा दी, और वे कुछ समय के लिए अपने धर्मों की व्यर्थ बातों को भूल गए। मुसलमानों और हिंदुओं के लिए यह एक नवीन युग का आरंभ था। अकबर ने अपने शासन के आरंभ में 1662 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1663 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में जजिया को भी समाप्त कर दिया। अतः अकबर धार्मिक प्रवृत्ति का था और धर्म की सत्यता को जानने के लिए वह जिज्ञासु भी था। बदायूनी ने लिखा है, बादशाह कभी कभी संपूर्ण रात्रि खुदा को याद करते हुए बिता दिया करता था। उसने अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की निरंतर यात्राएं की थी और वह फतेहपुर सिकरी के संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति भी बहुत श्रद्धा रखता था। धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता के कारण उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। सभी धर्मों के विद्वानों को वहां आने का निमंत्रण दिया और व्यक्तिगत रूप से ईसाई, जैन, पारसी और हिंदू विद्वानों के संपर्क में आया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा या एक घोषणा जारी कराया, जिसने धर्म के मामलों को सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर जानी होने के पश्चात अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज मजहर में उसे अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। महजर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, किंतु उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक एवं उसके दोनों पुत्रों अबुल फजल एवं फैजी द्वारा की गई थी। अकबर ने महजरनामा नामक सिद्धांत की घोषणा उलमाओं के विरोध को कम करने तथा राजत्व की गरिमा बढ़ाने के लिए की। अकबर के समय में 3 बार गोवा के ईसाइयों को दरबार में निमंत्रित किया गया और अकबर ने उसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को जाना। यद्यपि ईसाई पादरी अकबर को धार्मिक मामलों में अधिक प्रभावित न कर सके, तब भी उन्हें कांबे, लाहौर, हुगली और आगरा में गिरजे बनाने की आज्ञा प्राप्त हो गई। अपने समय के महान जैन विद्वान हीरा विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, शांति चंद्र, विजय सेन सूरी आदि को अकबर ने दरबार में आमंत्रित किया। अकबर जैन धर्म के हिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ। 1581 ईस्वी में उसने भेड़ों और घोड़ों का वध निषिद्ध कर दिया। उसने स्वयं वर्ष में 9 माह मांस खाना बंद कर दिया। उसने शिकार खेलना बंद कर दिया, जो उसका एक प्रमुख शौक था, और 1587 ईस्वी में उसने वर्ष में प्रायः 6 माह पशुओं का वध किए जाने का निषेध कर दिया। महान पारसी विद्वान दस्तूर जी मेहर जी को अकबर ने इबादत खाने में वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया। पारसी धर्म के संपर्क में आकर अकबर ने अग्नि और सूर्य को दंडवत करना आरंभ कर दिया। महल में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहने की व्यवस्था की और दरबार में पारसी त्यौहार मनाना आरंभ कर दिया। हिंदू विद्वान पुरुषोत्तम और देवी निरंतर अकबर को हिंदू धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया करते थे। उनके संपर्क में आने से अकबर हिंदुओं के कर्म और जीवागमन के सिद्धांतों में विश्वास करने लगा। इस प्रकार सभी धर्मों के संपर्क में अकबर आकर उदार और सभी धर्मों में विश्वास करने लगा। सभी धर्मों में सत्य है यह वह समझ गया। अकबर के निकट संपर्क में विभिन्न उदार व्यक्ति थे। अबुल फजल और फैजी से उसके संपूर्ण मित्रता संबंध स्थापित हो गई थी। ये व्यक्ति अत्यंत उदार थे। अकबर की राजपूत पत्नियों और संबंधियों ने भी अकबर के विचारों को सहिष्णु बनाने में सहायता प्रदान की। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीतिक कारण भी अकबर के उदार धार्मिक नीति के लिए उत्तरदायी थे। अपने समय में आरंभ में अकबर विभिन्न मुसलमानों के द्वारा किए गए विद्रोहों ने उसे यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि वफादारी के लिए वह किन किन पर निर्भर कर सकता है। राजपूतों से उसके विवाह संबंध हुए, उनके शौर्य, दृढ़ता और वफादारी की भावना से वह प्रभावित हुआ और उसने उन्हें अपना मित्र एवं राज्य की शक्ति का आधार बनाने का प्रयत्न किया। ऐसी स्थिति में उनके धर्म का सम्मान करना अकबर के लिए स्वाभाविक था। इक्तदार आलम खान ने इस पक्ष को अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य अपने शासक वर्ग में संतुलन स्थापित करना था। इस प्रकार अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा और उसके युद्धप्रिय राजपूत वर्ग की सहानुभूति और वफादारी प्राप्त करके तथा उसके माध्यम से शासक वर्ग में संतुलन बनाकर एक दृढ़ राज्य की स्थापना करने की इच्छा अकबर ने की, जो उदार धार्मिक नीति के निर्माण में सहायता दी। इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अकबर ने जिस धार्मिक नीति का पालन किया वह सभी धर्मों की समानता, सम्मान और सत्य पे की विश्वास पर आधारित थी। अकबर की इस धार्मिक नीति का क्रमिक विकास हुआ। उदारता से आरंभ होकर इबादत खाने, कोष्टक पूजा गृह, कोष्टक बंध का निर्माण, दस्तावेज अथवा मजहर तथा कथित अचूक आज्ञा पत्र, शो कॉल्ड इनफ्लेबिलिटी डिक्री, कोष्टक बंध की घोषणा की, विभिन्न उदार नियमों का निर्माण जिनके द्वारा सभी धर्मों को समान सुविधा देने तथा समाज और उनके सदस्यों को नैतिक आचरणों में सुधार करने का प्रयत्न किया। इस नीति की पूर्ति 1582 ईस्वी में, आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर, इस नीति की पूर्ति 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही, कोष्टक दीन इलाही, कोष्टक बंध की स्थापना करके हुई। अपने धार्मिक नीति का उद्देश्य उसने स्वयं इस प्रकार अपने शब्दों में प्रकट किया था। एक व्यक्ति द्वारा शासित साम्राज्य के लिए यह बुरा है कि उनके सदस्य आपस में विभक्त हों और एक दूसरे का विरोध करते हों। इस कारण हमें उन्हें संगठित करना चाहिए और वह भी इस प्रकार कि वे सब एक होकर भी किसी धर्म की इच्छाओं को न खो दें, बल्कि समस्त धर्म की इच्छाओं को ग्रहण कर सके। इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, प्रजा को शांति मिलेगी और साम्राज्य की सुरक्षा होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने आरंभ से ही कार्य किए थे। दास प्रथा की समाप्ति और हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया का हटाया जाना उसका प्रारंभिक प्रयास था। इस्लाम धर्म के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा से अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किया और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर वाद विवाद करने के लिए उसने इस्लाम धर्म के सभी विद्वानों को वहां आमंत्रित किया। अकबर उनके वाद विवादों को सुनता था। मुल्ला अब्दुल्ला और शेख अब्दुल नबी ने इन विवादों में प्रमुख भाग लिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के बारे में इस्लाम धर्म के विद्वान एकमत नहीं थे। विवादों के अवसर पर उन विद्वानों के विचारों का अंतर ही स्पष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति और असहिष्णुता का भी परिचय मिला। अकबर की उपस्थिति में भी विभिन्न विद्वान एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते थे और झगड़े तक के लिए तत्पर हो जाते थे। अकबर को इन बातों से दुख हुआ और इस्लाम की श्रेष्ठता से उसका विश्वास हिल गया। इस कारण उसने हिंदू, जैन और पारसी ईसाइयों तथा आदि सभी धर्मों को विद्वानों को इबादत खाने में आने की आज्ञा दे दी। जून 1579 ईस्वी में अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा जो अल्लाहो अकबर शब्दों से समाप्त हुआ, जिसका अर्थ था कि खुदा महान है। किसी भी तरह इन शब्दों का अर्थ यह न था कि अकबर ने देवत्व ग्रहण किया था। कुछ ही समय पश्चात सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर पढ़ा। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने इसे तैयार किया था और प्रमुख मुसलमान धार्मिक व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का अधिकार अकबर को दिया गया। इसी मजहर को स्मित और वुलजले हेग जैसे इतिहासकारों ने अचूक आज्ञा पत्र इनफ्लेबिलिटी डिक्री पुकारा है और कहा है यह स्पष्ट करता है कि अकबर पोप और बादशाह दोनों ही बनना चाहता था, परंतु उनका यह कथन सत्य नहीं है। इसी प्रकार IH कुरैशी ने भी मजहर के विषय में अकबर की आलोचना की है। उनके अनुसार यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसने अकबर को परंपरागत मुसलमान इस्लाम से विरोध करने तथा धर्मद्रोहियों के पक्ष में मध्यस्थता करने का अवसर दिया। परंतु यह विचार भी अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों को स्वीकार नहीं है। इन विचारों के विपरीत सैयद ए रिजवी का विचार आधुनिक इतिहासकारों को अधिक मान्य है। उनके अनुसार मजहर का उद्देश्य उन सभी विषयों को जो अकबर को हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित थे बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना था। वस्तुतः मजहर के द्वारा अकबर को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि मतभेद होने पर इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में वह अंतिम निर्णय कर सकता था। यद्यपि वह निर्णय कुरान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए था। यह अधिकार अभी तक सद्रे सद्र कोष्टक मुख्य सदर कोष्टक बंद का था, जो बादशाह का ही एक अधिकारी था। इस प्रकार अपने ही एक अधिकारी के अधिकारों को अपने हाथ में ले लेने से अकबर पोप बन गया था अथवा बनना चाहता था, यह कहना उचित नहीं है। सभी धर्मों में सत्य है, इस विश्वास को लेकर धार्मिक सहिष्णुता की नीति के व्यवहारिक प्रयोग के लिए अकबर ने निम्नलिखित विभिन्न राज्य की नीति और व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में किए। पहला, मुसलमान, हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन आदि सभी धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को अपने पूजा स्थलों मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर आदि को बनवाने, उनमें पूजा करने, अपने धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मानने एवं प्रचारित करने तथा अपने धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि को मनाने की स्वतंत्रता दी गई। जो स्त्री पुरुष और बच्चे जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे उनको अपने धर्म को पुनः स्वीकार करने की आज्ञा दे दी गई। राज्य सेवाओं में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार स्थान प्रदान किया गया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे अथर्ववेद, रामायण, महाभारत आदि का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। पांचवा, झरोखा दर्शन, तुलादान जैसे प्रथाओं का आरंभ, होली, दिवाली वसंत आदि हिंदू त्योहारों का दरबार में मनाया जाना, अकबर का स्वयं गाय का मांस न खाना, हफ्ते में कई दिन मांस न खाना, शिकार खेलना बंद करना, पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाना आदि ऐसे कार्य थे जो अकबर ने सहनशीलता की भावना के व्यक्तिगत उदाहरण स्वरूप प्रारंभ किए थे। राज्य की कर व्यवस्था एक समान थी। धर्म के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वेशभूषा, आचार विचार और सामाजिक परंपरा को मानने की सुविधा थी। इस प्रकार राज्य की तरफ से धर्म के आधार पर प्रजा में कोई भेदभाव नहीं किया गया। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया गया। उदाहरण के तौर पर उसने हिंदू विधवाओं को पुनः पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया, बलपूर्वक स्त्रियों को सती होने पर बाधा लगा दी, निकट के संबंधियों में विवाह करने पर रोक लगाई, 16 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष के कम आयु की लड़की का विवाह करने और शराब पीने पर रोक लगाई तथा वेश्याओं को नगर में रहने के लिए अलग स्थान दिया गया, परंतु यह बाधाएं किसी संप्रदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने हेतु न थी बल्कि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए थी। अकबर की धार्मिक नीति के विपक्ष में स्मिथ और वुलजले हेग जैसे इतिहासकारों ने भी यह कहा है। एक ओर तो अकबर के प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया, परंतु दूसरी ओर उसने इस्लाम धर्म के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार किया। उनकी यह धारणा तत्कालीन ईसाई धर्म प्रचारकों और इतिहासकार वदायूनी के कथन पर आधारित है। वदायूनी ने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की थी, जिसमें उसने बताया था कि मुतासादियों को कानूनी मान लिया गया था, 1580 ईस्वी में व्यक्तियों को दाढ़ी बनाने की आज्ञा दे दी गई थी, 1581 से 82 ईस्वी में विरोधी मुल्लाओं और शेखों को कंधार भेज दिया गया और घोड़ों से उनकी बदली कर दी गई। अकबर ने कुरान की पुस्तकों को नष्ट कराया था, अरबी भाषा की शिक्षा में बाधा डाली थी, 1583-84 भी में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया था, अकबर ने हज की यात्रा बंद करा दी थी। अकबर ने मुस्लिम समाज में मुस्लिम त्योहारों और रोजों उपवासों पर रोक लगा दी थी आदि। अकबर के विरुद्ध उपर्युक्त आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते। अकबर ने कभी भी कुरान और मुहम्मद का अपमान नहीं किया और न ही मुस्लिम रोजों त्योहारों नमाज पर कोई रोक लगाई थी। हज मक्का की यात्रा अकबर के समय में यथावत होती रही थी। युद्ध के अवसर पर खाली मस्जिदों का उपयोग सेना के लिए कर लिया गया हो यह संभव है। अरबी की तुलना में फारसी शिक्षा पर बल और संस्कृत को भी प्रोत्साहन देना किसी हालत में अरबी की शिक्षा को समाप्त करना जैसे नहीं माना जा सकता। अकबर के समय में मुसलमान दाढ़ी रखते थे और उनके नाम के स्थान पर अहमद तथा मुहम्मद जुड़ा होता था। इस कारण वदायूनी का आलोचना सत्य पर आधारित नहीं मानी जा सकती। वदायूनी कट्टर मुल्ला था और वह उन कट्टर मुसलमानों में से एक था जो अकबर और धार्मिक सहिष्णुता और समानता की नीति से असंतुष्ट थे। उनकी दृष्टि में अकबर का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह इस्लाम के कट्टर सिद्धांतों को नहीं मानता था। उसने राज्य में इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया था। अपने उद्देश्य में असफल होकर अकबर से असंतुष्ट हो गए और अब उन्होंने अकबर को घमंडी, पाखंडी और इस्लाम को न मानने वाला सिद्ध करने का असफल सफल प्रयास किए। अकबर के बारे में इतिहासकारों का एक प्रश्न यह भी विवाद का है, क्या अकबर अपने जीवन पर्यंत इस्लाम धर्म को मानने वाला रहा था? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया था। यद्यपि मुसलमान सभ्यता की सभी बातों को छोड़ना उसके लिए संभव था, असंभव था। उनके अनुसार अकबर का इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों कलमा, 5 नमाज, रोजा, जकात और हज में विश्वास न करना, एकमात्र इस्लाम धर्म को ही सत्य धर्म स्वीकार न करना, मुहम्मद को ही एकमात्र पैगंबर स्वीकार न करना, हिंदू रीति रिवाजों को मानना, हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करना आदि ऐसी बातें थीं जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि अकबर ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था। डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है, अकबर सबसे अधिक हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ था। यदि हिंदू पंडितों और राजाओं में इतनी उदारता होती कि वे मुसलमान राजा को हिंदू धर्म में दीक्षित करने को तैयार होते और उस समय मूर्ति पूजा और जातिपात को दूर करने की चेष्टा करते तो संभव था अकबर हिंदू धर्म को ग्रहण कर लेता। डॉक्टर S.R. शर्मा का मत डॉक्टर श्रीवास्तव के विपरीत है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार अकबर अंत समय तक इस्लाम धर्म को मानने वाला था। वह लिखते हैं, जब सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तब अकबर के विरुद्ध वह इस्लाम को न मानने का आरोप नहीं लगा सका था। वदायूनी जो अकबर से असंतुष्ट था के कथन के अनुसार 1598 ईस्वी तक पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। उपर्युक्त दोनों विद्वानों के विचारों के आधार पर यह स्वीकार करना कठिन होगा कि अकबर इस्लाम के सिद्धांतों को कट्टरता से पालन नहीं करता था और उनके व्यवहारिक प्रयोग में वह बहुत उदार रहा था। यद्यपि उसने धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, परंतु वह अपने मृत्यु पर्यंत मुसलमान रहा और एक अच्छा मुसलमान रहा। 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद इलाही उर्फ दीन इलाही डिवाइन मोनोथिज्म की स्थापना की। 1583 ईस्वी में एक नए कैलेंडर की शुरुआत की। इलाही सनवत को जारी किया गया। 1579 ईस्वी में महजर अथवा खुतबा की घोषणा करके अकबर ने धर्म के विषय में जिस अधिकार को प्राप्त किया था यह उसका परिणाम था। डॉक्टर S.R. ने लिखा है, आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर, डॉक्टर S.R. ने लिखा है, क्योंकि बादशाह अब धार्मिक मामलों का प्रधान था, अतः उसने अपनी प्रजा को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक हो गया था उसके लिए। डॉक्टर लाल पुनः लिखते हैं, उन सभी व्यक्तियों को जो उसकी सुलह कुल कोष्टक सभी के साथ शांति कोष्टक की नीति में विश्वास करते थे वह किस प्रकार एक सूत्र में बाधे या उसकी समस्या थी, उसका समाधान था दीन इलाही। अबुल फजल इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित बना। जो भी व्यक्ति इस संप्रदाय का सदस्य होना चाहता था वह किसी भी रविवार के दिन बादशाह के पास जाकर उसके कदमों में अपनी पगड़ी रखता था। बादशाह उसे एक शिस्त प्रदान करता था जिस पर खुदा का नाम अल्लाहु अकबर खुदा होता था। इस प्रकार उस व्यक्ति को इस संप्रदाय का सदस्य बनाया जा सकता था। इस संप्रदाय के सदस्यों से अग्रलिखित नियमों और व्यवहारों का पालन करने की उपेक्षा की जाती थी। वे आपस में अभिवादन के लिए अल्लाहो अकबर और जल्ले जलालेहू शब्दों का प्रयोग करें। वे मृतक के सम्मान में दी जाने वाली दावत उसके जीवन काल में ही दें। वे अपनी वर्षगांठ पर दावत दें और कुछ दान धर्म भी करते रहें। जहां तक संभव हो मांस का प्रयोग न करें। कम आयु की लड़कियों अथवा वृद्धा स्त्रियों के साथ विवाह न करें। 10 सद्गुणों को ग्रहण करें। वे गुण थे क्षमा, उदारता, सांसारिक इच्छाओं का दमन, सांसारिक मोह से स्वतंत्र होने की इच्छा, अपने कार्यों का पुनः अवलोकन, सद्कार्यों को करने की इच्छा, सद्व्यवहार, मीठी भाषा और शब्दों का प्रयोग, सांसारिक जीवों का त्याग तथा ईश्वर से प्रेम और आत्मा का ईश्वर से मिलने के लिए प्रयत्न। एक बार फिर हम इस 10 गुणों को पढ़ रहे हैं। पहला क्षमा, दूसरा उदारता, तीसरा सांसारिक इच्छाओं का दमन, चौथा सांसारिक मोह से स्वतंत्र होने की इच्छा, पांचवा अपने कार्यों का पुनः अवलोकन, छठवां सद्कार्यों को करने की इच्छा, सातवां सद्व्यवहार, आठवां मीठी भाषा और शब्दों का प्रयोग, नौवां सांसारिक जीवों का त्याग तथा ईश्वर से प्रेम और दसवां आत्मा का ईश्वर से मिलने के लिए प्रयत्न। छठवां एक पत्नी व्रत का पालन करें। सातवां जुआ न खेलें और न कोई नशा करें। आठवां विधवा विवाह को प्रोत्साहन दें। नौवां प्रातःकाल, दोपहर और शाम को ईश्वर को याद करें। दसवां अपना धन, सम्मान, जीवन और धर्म बादशाह को अर्पित कर दें। इसी आधार पर इस संप्रदाय के सदस्यों की श्रेणी निश्चित की जाती थी। बादशाह को चारों चीजों को समर्पित करने वाला श्रेष्ठतम श्रेणी का, 3 चीजों का समर्पित करने वाला द्वितीय श्रेणी का, 2 चीजों का समर्पित करने वाला तीसरी श्रेणी का और 1 चीज का समर्पण करने वाला चौथी श्रेणी का सदस्य माना जाता था। बादशाह को इन चीजों का समर्पित करने का अर्थ केवल इतना था कि उसकी उस वस्तु पर बादशाह का अधिकार हो जाता था। बादशाह जिस प्रकार तथा जिस समय चाहे उसका उपभोग कर सकता था। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या केवल कुछ हजार तक ही सीमित रही और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या इसमें अधिक से अधिक 20 थी। हिंदू प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। दीन इलाही के स्थापना के कारण कुछ इतिहासकारों ने अकबर की बहुत आलोचना की। बार्तोली ने उसे अकबर की दूरदर्शिता पूर्ण धूर्तता कहा था। इतिहासकार इस्मत ने इसके बारे में लिखा है, दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी बेवकूफी का नमूना था। परंतु इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो दीन इलाही एक धार्मिक संप्रदाय न था। उसका न कोई पैगंबर था और न उसका कोई पूजा गृह था, न उसकी कोई धार्मिक पुस्तक थी और न ही उसका कोई पुरोहित वर्ग था। जो बातें एक धर्म की प्रमुख आवश्यकताएं मानी जाती हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाली अपनी प्रजा को एक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का पाठ सिखाना चाहता था। दीन इलाही की स्थापना में अकबर का यही उद्देश्य था। इस प्रकार दीन इलाही की स्थापना में अकबर का उद्देश्य उदार था और उसके प्रचार में भी वह उदार रहा। यदि दीन इलाही असफल हुआ तो उसमें अकबर का दोष न था बल्कि उस युग की रूढ़िवादी परिस्थितियों दोषी थी। अपने लेख अकबर का दीन इलाही को डॉक्टर के एस लाल ने बहुत सुंदरता से इस प्रकार समाप्त किया है, वह एक अच्छे मुसलमान की तरह जीवित रहा और मरा, लेकिन कुछ पुस्तकें और बहुत से लेख यह बताते हैं कि अच्छा मुसलमान औरंगजेब था न कि अकबर। जो कुछ भी अच्छा अथवा बुरा औरंगजेब ने किया वह अपनी धार्मिकता के कारण किया। अब प्रश्न यह है कि इनमें से कौन अच्छा मुसलमान था? वह जिसने मंदिरों को तोड़ने, जजिया लगाने और प्रेम अन्य धर्मों का पालन करने वालों से युद्ध करने का विचार किया, अथवा वह जिसने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को एक संप्रदाय के द्वारा एक करने का विचार किया। यदि पहला व्यक्ति अच्छा मुसलमान कहलाने का अधिकारी है, तो यह बात स्मरणीय है कि जिस प्रकार प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार घृणा से घृणा उत्पन्न होती है। तथा औरंगजेब जैसे अच्छे मुसलमान सर्वदा अच्छे हिंदू, अच्छे सिख और अच्छे ईसाइयों को जन्म देंगे, जो घृणा का उत्तर घृणा से देंगे। यह मध्ययुगीन भारत की इतिहास का सबक है। वास्तव में अकबर, जो सभी के साथ शांति में विश्वास करता था, एक अच्छा मुसलमान था। अकबर की धार्मिक नीति का परिणाम बहुत लाभदायक रहा। अधिकांश भारतीय जनता ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सहृदय स्वागत किया, परंतु एक छोटा वर्ग ऐसा भी था जिसने अकबर की नीति का विरोध किया। वह वर्ग था इस्लाम के कट्टर समर्थकों का, जो अकबर से इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का अपेक्षा करता था। अपने मुसलमान प्रजा को अकबर के विरुद्ध भड़काया और यह प्रचार किया कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया है। अतः बंगाल बिहार में 1581 से 82 ईस्वी में विद्रोह हुए और अकबर के सौतेले भाई हकीम ने भारत पर आक्रमण करके उसे जीतने की आशा की, परंतु ये विद्रोह असफल हुए और अंत में अकबर की नीति को अधिकांश व्यक्तियों ने स्वीकार कर लिया। कट्टर मुसलमानों के अतिरिक्त उन ईसाई पादरियों और धर्म प्रचारकों ने भी अकबर की नीति की कटु आलोचना की है, जो अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में विफल हुए थे। परंतु भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता, उदार मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मावलंबियों ने अकबर की इस नीति का समर्थन किया और वे सभी अकबर और मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार हो गए। अतः मुगल साम्राज्य के विस्तार और अस्थायित्व में अकबर की इस धार्मिक नीति ने बहुत सहयोग दिया और अकबर को राष्ट्रीय सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। अकबर ने राज्य को एक अल्पमतवादी धर्म के समर्थकों तथा मुल्लाओं एवं उलमाओं के प्रभाव और अत्याचार से मुक्त करा दिया। डॉक्टर एस आर शर्मा ने लिखा है, भारत के शासकों में उसका स्थान बहुत ऊंचा है और अन्य बातों के अतिरिक्त इसका मुख्य कारण यह था कि उसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया और उसमें कुछ सफलताएं भी पाई। यदि उसे एक राष्ट्र के निर्माण में सफलता नहीं मिली होती, तो उसका कारण यह था कि उसने समय के परिस्थितियों को तत्काल नहीं बदल सकता था। यह बात स्मरणीय है, उस समय जब यूरोपीय विरोधी संप्रदायों के संघर्षों से ग्रस्त था और रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों को जीवित जला रहे थे तथा प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिकों का कत्ल कर रहे थे, अकबर ने विरोधी संप्रदायों को नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों की शांति प्रदान की। यदि उसकी उदारता के विस्तार, जिन नस्लों पर वह उदारता लागू की गई और वह तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में न रखा जाए, तो कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में धार्मिक उदारता के क्षेत्र में वह प्रथम और महान अन्वेषक था। इसी के साथ मैं सुधीर शर्मा बादशाह अकबर की धार्मिक नीति समाप्त करता हूँ।